नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गोपालगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और सहरसा सहित उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। कोसी, गंडक और बागमती समेत अन्य नदियों में भारी जल श्राव से सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती और पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकहरना नदी का तटबंध टूटा। केंद्र सरकार ने कहा, बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम भेजी जाएगी। और प्रदेश के सभी जिलों में आज से यातायात से जुड़ी जानकारी के लिए मैप माई इंडिया ऐप सुविधा की हो रही है शुरूआत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कोसी और गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उत्तर और पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ का पानी कई नए इलाकों में तेजी से फैल रहा है। विभिन्न नदियों में भारी जल श्राव से सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती और पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकहरना नदी का तटबंध टूट गया है। वहीं खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल और भोजपुर में भी विभिन्न स्थानों पर तटबंधों पर भारी दबाव बना हुआ है। हालांकि कोसी और अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। गोपालगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण सहित 16 जिलों की लगभग 10 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
बागमती नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर रहने के कारण शिवहर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तरियानी छपरा गांव के पास टूटे बागमती तटबंध होकर पानी का बहाव तेजी से जारी रहने के कारण बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैल रहा है। तरियानी छपरा और आसपास का गांव जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बाढ़ से प्रभावित लोग ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। इधर पिपराही प्रखंड के रतनपुर के पास बना रिंग बांध भी बाढ़ के पानी के कारण टूट गया। तरियानी के अलावा पुरनहिया प्रखंड के बराही, जगदीश और दोस्तियां गांव में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह।
दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 8 पंचायत बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। कई तटबंधों पर दबाव बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। एक रिपोर्ट।
जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत भोबौल गांव के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया और किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायत और गौरावरम प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 23 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर पैकेटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत व बचाव कार्य में लग गई है। आकाशवाणी के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में कमी दर्ज होने के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी घट रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदर प्रखंड में घूरन जाने वाली सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है।
सुपौल तटबंध के भीतर सुपौल के सदर प्रखंड के डवहारी चौक के पास 57.20 पॉइंट से घूरन जाने वाली सड़क बाढ़ में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण मुख्य शहर से घूरन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को पहले ही निकाला जा चुका है। इधर कोसी तटबंध के भीतर लगभग 25 पंचायतों की 1.5 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित है। इनके लिए 35 सामुदायिक रसोई किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
वहीं कोसी बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद मधेपुरा जिले के चौसा और आलमनगर प्रखंड में बाढ़ का पानी तेज गति से फैलने लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड की कई पंचायतों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
जिले के औराई, कटरा और गायघाट के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से राहत शिविर, सामुदायिक किचन, पॉलीथीन सीट वितरण, मेडिकल कैंप, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, तटबंध की सुरक्षा और निगरानी, नाव की व्यवस्था, सड़कों पर आवागमन की सुविधा बहाल रखने सहित सभी आवश्यक सुविधा की गई है। प्रशासन की ओर से औराई, कटरा और गायघाट समेत जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने तथा डॉक्टर को मुख्यालय में बने रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। इन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुजफ्फरपुर से आकाशवाणी समाचार के लिए कौशल किशोर कौशिक।
सीतामढ़ी जिले में भी बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कल से गिरावट जारी है। इससे बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से बेलसंड और रून्नीसैदपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ प्रभावित दरभंगा और सीतामढ़ी जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। अपर मुख्य सचिव ने प्रभावित इलाकों में पर्याप्त रोशनी के लिए जनरेटर लगाने के साथ ही अस्थायी शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज सहरसा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। श्री पासवान इस दौरान बराही, सहरसा परिसदन, केदली पंचायत के प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमें भेजी जाएंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, जमुई सहित आसपास के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आज से यातायात से जुड़ी सीधी जानकारी के लिए मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस ऐप के जरिए ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। ऐप के लिए जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसके अलावा ऐप पर तस्वीर के माध्यम से दुर्घटना और जाम से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। देश में बिहार चौथा ऐसा राज्य है जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण में कागजात जमा करने के लिए रैयतों को और 3 महीने की छूट दी जा सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही रैयतों को 3 महीने की मोहलत दी है।
ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे, तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए, और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। जिसका सर्वे छूटेगा ये मेरा काम है, उसके घर पर हम पदाधिकारी को भेज के सर्वे करवा देंगे।
और अब प्रस्तुत है स्वच्छता ही सेवा श्रृंखला के तहत आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज की कड़ी में गया जिले की रिपोर्ट, जहां स्वच्छता सेनानियों ने कचरे से कंचन की तर्ज पर पार्क तैयार किया है।
गया नगर निगम ने शहर के स्टेशन रोड स्थित निगम स्टोर में कचरे का सदुपयोग करते हुए एक पार्क का निर्माण किया है, जहां सफाई कर्मी थोड़ा समय सुकून से बिताते हैं। निगम के सफाई कर्मियों ने ही कचरे से कंचन का निर्माण करके यह पार्क बनाया है। पहले इसी जगह खराब गाड़ियों का अंबार था, जहां अब सुंदर और स्वच्छ वातावरण में आनंद की अनुभूति हो रही है। स्टोर में काम करने वाले सहायक चंद्रमोहन कुमार उर्फ चिंटू ने बताया बताया कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर पार्क निर्माण करने की ठानी और इसमें सफल हुए। इस कार्य में निगम के सभी कर्मचारियों ने भरपूर साथ दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 67 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक पटना जिले से 50 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 3,181 लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। रेलवे की ओर से आज से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। कोडरमा, गया, पंडित दीनदयाल, प्रयागराज, दिल्ली के रास्ते धनबाद और जम्मू तवी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन धनबाद से प्रत्येक मंगलवार और जम्मू तवी से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। इधर पटना से बनारस तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का आज से 16 अक्टूबर तक दानापुर स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। बेगूसराय और पटना के मोकामा के बीच स्थित राजेंद्र सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण सेतु के सड़क मार्ग पर आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद कर दिया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। वृद्धजन के प्रति आदर और सम्मान प्रदर्शित करने के मकसद से हर वर्ष 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने अपने संदेश में कहा है कि वृद्धजनों के मार्गदर्शन और ज्ञान से हमारा परिवार तथा समाज सशक्त बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वृद्धजनों के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में बाढ़ की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 10 जिलों में बांधों पर भारी दबाव, 1 दर्जन नदियों के तटबंध में कटाव, बाढ़ से 1.5 लाख हेक्टेयर में फसल क्षति। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राज्य के 16 जिलों के 55 प्रखंडों की 9 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से घिरी। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, गोपालगंज में शराब तस्करों से मुठभेड़, 2 को लगी गोली। प्रभात खबर लिखता है, जीएसटी मुक्त हो सकता है ट्रैक्टर, 19 अक्टूबर को काउंसिल की बैठक में किसानों को राहत संभव। अखबार की एक अन्य सुर्खी है, 15 विदेशी श्रद्धालुओं ने गया में पितरों के लिए किया पिंडदान। नवविहार टाइम्स ने लिखा है, दशहरे में ड्रोन से होगी निगरानी, सादे लिबास में तैनात रहेगी पुलिस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोपालगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और सहरसा सहित उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। कोसी, गंडक और बागमती समेत अन्य नदियों में भारी जलस्राव से सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती और पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकहरना नदी का तटबंध टूटा। केंद्र सरकार ने कहा, बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम भेजी जाएगी। और प्रदेश के सभी जिलों में आज से यातायात से जुड़ी जानकारी के लिए मैप माई इंडिया ऐप सुविधा की हो रही है शुरूआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।